से आती हूं ऐसा देखने में तो लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और हम उसी वास्तविकता के लिए जानने के लिए हमेशा की तरह आज भी विचार करेंगे कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं उनके पीछे रूट कॉज, मूलभूत कारण क्या है। बाहर के कारण भी हैं, पर वो कोई कारण जो बाहर नहीं दिखाई पड़ता वो मेरे ही भीतर मुझे देखना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन में पहली मुश्किल तो ये है कि हमें अपना दुख ज्यादा बड़ा मालूम पड़ता है दूसरे की अपेक्षा, पहली बात है। और इतने नहीं, हमें दूसरे का सुख भी अपने सुख से बड़ा मालूम पड़ता है। और इतना ही नहीं, हम अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में भी डालने के लिए कभी कभी तैयार हो जाते हैं। ये बातें जो है वो हमारे अपने जीवन को कितना मुश्किल में डालती हैं, इस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया। कभी रास्ते में कोई मिल जाए और उससे पूछे कि कैसे हो तो क्या कहेगा, ठीक है, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ऐसा सुन करके अपने को धोखा होने लगता है कि देखो इनका तो सब ठीक चल रहा है और चल भी रहा होगा ठीक, मुझे ही है तकलीफ, ऐसा लगने लगता है। अच्छा, और अपन से कोई पूछे तो अपन भी यही कहेंगे, तो सामने वाले को भी यही धोखा होता है। अपन सीधा किसी से नहीं कह सकते कि भैया आपका पूछ रहे जैसी तुम्हारी सू सी हमारी, ऐसा नहीं कह पाते हैं। अपन यही कहेंगे कि नहीं, हमारा अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। शायद यह जो हमारा व्यवहार है, यह जो हमारी अस्पष्टता है, यह जो हमारे भीतर ही एक दुराव है, छिपाव है, वो शायद हमारे जीवन को आसान नहीं होने देता और हमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बहुत गलत फहमी हमारे भीतर बन जाती है निरंतर उसी प्रकार के बोध की वजह से कि मेरा दुख बड़ा है दूसरे की अपेक्षा, दूसरे का सुख बड़ा है मेरे सुख की अपेक्षा। तब फिर मुझे क्या करना है? मुझे अपना सुख बढ़ाना है, भले ही दूसरे को दुख पहुंचे तो पहुंच जावे, क्योंकि उसको तो सुख पहले से ही है, दुख तो मुझे। अगर हमें ये मालूम पड़ने लगे कि दुख सिर्फ मेरे मत्थे नहीं आया है, सारे संसार में ही दुख है, यहां सब दुखी है और सब दुख से बचने का उपाय कर रहे हैं, किसी का दुख कमती है, किसी का ज्यादा है, किसी का दिखाई पड़ता है, किसी का दिखाई नहीं पड़ता है, को पुत्र बिना नित झूले हुए मरे तो रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख तसाता, यह जग वास जथारथ देखो जित देखो दुख दाता। ये किताब में पढ़कर के दोहरा तो हम लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब यही बात घटित होती है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, जबकि मुश्किल को आसान बनाना भी हमारे हाथ में है। कि जब मैं हर जगह हाथ लगा के देखता हूं वहीं से मुझे दुख मिलता है, तब मैं ये मन में तय क्यों नहीं कर लेता हूं कि यहां पर जितना भी सुख और दुख है वो सब मेरी अपनी मान्यता का है। मैं मान बैठा हूं कि मैं दुख में हूं और मैं चाहूं तो उसी चीज में से सुख निकाल सकता हूं जिसमें से कि मैं दुख निकाल लेता हूं। ये इतना सा क्लू कहना चाहिए, ये इतना सा रहस्य व्यक्ति को, हम सबको अगर मालूम पड़ जाए तो फिर हमें उतनी मुश्किल नहीं है। फिर अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति भी आ जाए तो हम तैयार हैं कि वो तो हम पहले से जानते थे कि संसार में विपत्ति आए बिना नहीं रहती, मुझे अब इस विपत्ति में से आसानी से कैसे निकलना, हाउ टू ट्रेवल प्रेजेंटली, मैं उसमें से कैसे अपने जीवन की यात्रा को बहुत आसान बना लूं, ये पर मुझे ध्यान रखना है। विपत्ति से बचने के लिए पूरे मुझे उपाय नहीं करना है और विपत्ति से बचने का जब भी मैं उपाय करूंगा तो दूसरे पर विपत्ति आए बिना नहीं रहेगी। ऐसा अगर हमारे भीतर विचार आ जाए फिर देखिएगा। एक मैंने शायद घटना आपको सुनाई थी या नहीं भी सुनाई हो सकता है, फिर से सुना देता हूं, या कि पहली बार सुना रहा हूं, दोनों में से कोई एक चीज होगी। बहुत ज्यादा दिन रोकिएगा तो रोज रोज मेहमानी नहीं कर पाएंगे भाई, है ना? तो हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सी वाली चीज आपसे कह दी थी। फिर भी कई चीजें जो हमेशा हमें रिवाइज करना चाहिए, जिनसे हमारा जीवन आसान होता है, ऐसा मान करके। एक किसान था, बहुत गरीब किसान था, और किसान को मुश्किल ये होती है कि बो तो दिया अनाज, आ भी जाएगी फसल लेकिन पूरी की पूरी आ जाए ऐसा कोई तय तो है नहीं, पानी ज्यादा गिर गया तो खराब, पानी कमती गिरा तो खरा, सब कुछ ठीक हो गया, इल्ली लग गई, पाला पड़ गया, ठंड ज्यादा गिर गई, धूप ज्यादा लग गई, दुनिया भर की मुश्किलें। तो हर साल उसको कुछ ना कुछ होता था, इस साल पानी कम गिरा तो उस साल पानी ज्यादा गिर गया, अब पानी कम ज्यादा नहीं गिरा है तो ठंड ज्यादा पड़ गई या कि गर्मी ज्यादा हो गई, अब बहुत मुश्किल। वो हमेशा उदास, हर फसल के बाद वो अपने घर के बाहर उदास बैठा दिखता था। और सचमुच जब लोग उसके पास से निकलते थे तो वो भी कहते थे कि ठीक है भैया, अपन ने तो सिंचाई कर ली, ये गरीब आदमी क्या करेगा, सचमुच इस बार तो वाकई फसल खराब हुई है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि फसल एकदम ठीक आई, ना पानी कम गिरा, ना पानी ज्यादा गिरा, ना ठंड वंड पड़ी और ना कोई इल्ली लगी, सब एकदम बढ़िया आई फसल। अब तो लोगों ने कहा कि वो जरूर बहुत खुश हो, और होना ही चाहिए। जब उसके घर के सामने से लोग निकले तो वो फिर माथे पर हाथ रखे बैठा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि अरे भाई अब ये बात समझ में नहीं आई, हो सकता है और कोई दुख हो इसको। पूछा उन्होंने कि क्यों, अब की बार तो फसल बहुत अच्छी आई है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। क्या लड़का है, तो बढ़िया है, क्यों क्या फसल खराब हो गई? कहने हाँ सब फसल तो अच्छी आई है, मनो अब सब फसल अच्छी आ गई, कच्चू खराब नहीं भाव सुधूर का खुआ। अब देखो उसके, अब जब खराब हो जाती थी तो वो कहता था कि अब सब खराब हो गई हम क्या खाएं, और अब जब सब अच्छी हो गई तो उसमें से भी दो कि सब अच्छी गाय हो गई, थोड़ी खराब होती तो ढूंढों के काम ही आती, अब उनको क्या खिलाए। अब जिसको दुख ही निकालने की आदत पड़ जाती है और अपना ही दुख उसको मालूम ज्यादा बड़ा मालूम पड़ने लगता, तो बताइए अपने हाथ से हम मुश्किल खड़ी कर रहे हैं या कि कोई हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। यहां इस संसार में सब कुछ अच्छा हो जाने पर भी हमने अगर एक बार अपने जीवन में ये आदत डाल ली है कि हमारा दुख यहां पर बड़ा है, तब तो हम कभी भी उससे निजात नहीं पा पाते हैं। तब हम हमेशा हर चीज में से, सुख में से भी हमारे दुख निकालने की आदत बन जाती है। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हम सबके साथ में है, हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। जहां से दुख मिल रहा है वहां से भी मैं क्या करूं कि वहां से भी मैं सुख निकालूं, है बहुत कठिन काम है। सारा खेल एटीट्यूड का है, सारा खेल अप्रोच का। हमारा अपना अप्रोच क्या है, हमारा अपना सोच का ढंग क्या है, इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। हमें थोड़ा सा अपने सोच को बदलना पड़ेगा तो ये बड़ी मुश्किल हम आसान कर सकते हैं। हम देखें कि हम छोटे छोटे से सुख जो अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरा भी चाहता है, हम अपने सुखों को बड़ा बना सकते हैं दूसरे के छोटे छोटे सुखों में शामिल होकर के। एक तरीका अपने सुख को बढ़ाने का ये है, अपने दुख को कमती करने का एक तरीका ये है कि हम दूसरे के दुख में उसके साथ खड़े हो जाएं और अपने साथ किसी और को तैयार कर लें दुख में खड़े होने के लिए, हमारा दुख आधा रह जाएगा। गणित है, सुख बांटो दूना हो जाता है, दुख बांटो आधा रह जाता है। उल्टा गणित है, हम अपने सुख और दुख को इस तरह से चाहें, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत वैसी मानसिकता चाहिए, हम दूसरे के सुख में अगर खड़े होते हैं तो हमें दूसरे के सुख में दुख में भी दुखी होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और हम लोगों के साथ मजा तो ये है कि दूसरे के दुख में सहानुभूति पहुंचाने तो हम जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसे किस चीज में सुख मालूम पड़ता है उसमें हम कभी शामिल नहीं होते। मैंने बहुत पहले लिखा था कि बेल उठाएं या हाथ लगाएं या कंधे लगाएं मेरी अर्थी को, मेरे दुख में वे शामिल हों जो मेरे सुख में जो खुश हो सके हैं, मेरे सुख में जो हंस सके हैं, वरना मेरे सुख में जिन्हें कभी सुख नहीं मालूम पड़ा वे मेरे दुख में खड़े होने की जरूरत ना करें, मेरे दुख में सहानुभूति के लिए तत्पर ना हो। बहुत पहले सन 80 के लगभग की बात, ये मेरे दिमाग में उस समय जब देखता हूं, बहुत गौर से मेरे देखने की आदत है सब चीजों को, और मैंने उस समय ये चीज अचानक ही मन में आई थी कि देखो कैसा हो गया है, मैं भी जो है
दूसरे के सुख से दुखी हूं कि दूसरा क्यों सुखी है इस बात से मैं दुखी हूं, तो फिर मैं उसको अपने दुख में शामिल होने के लिए कैसे कह सकता हूं, दूसरे के दुख में शामिल कैसे हो। हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी करते हैं अगर हम इस तरह के सोच वाले हैं, तो ये एक कारण है। तो थोड़ा सा गौर करें, अपने दुख को हम देखें कि हम बड़ा करके तो नहीं देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी फॉल्स सौरव होते हैं, कुछ ऐसी भी उदासी होती है जो कि फॉल्स होती है, जिसके कि कोई मायने नहीं होता, जिसके कोई कॉज नहीं होते हैं, वो बस होती है हमारी अपनी मानसिकता की वजह से। हमारे अपने इमोशंस ऐसे हो जाते हैं, क्रोध का इमोशन भी होता है, सौरवनेस का इमोशन भी होता है। हम सब चीजों में से उदासी ही निकाल लेते हैं, हम कभी सुखी नहीं हो पाते। हमें देखना पड़ेगा दूसरे के सुख में भी मैं सुखी हो सकता हूं, दूसरे के दुख से जब मैं दुखी होता हूं तब भी मैं सुखी पाता हूं। बहुत अजीब सा है ये रिश्ता, दूसरे के दुख से दुखी होकर के भी मैं सुखी पाता हूं। दूसरे के सुख से तो सुखी होता ही हूं अगर एक रिश्ता मेरे बीच है तो, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूं कि दूसरे का सुख मेरे से ज्यादा बड़ा है, वो मेरे लिए दुख का कारण हो जाता है। और जब मैं ये देखता हूं कि दूसरे का दुख मेरे से कमती है, मेरा दुख बड़ा है, तब मेरा दुख ना भी हो बड़ा, बड़ा और ज्यादा हो जाता है। हमें इस चीज पर थोड़ा विचार करके आसान बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरी चीज है, हम अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करें। गांधी जी ने कहा, अपने ऊपर जो स्वयं अंकुश रख लेता है वो उत्थान करता है, और जो दूसरे के लगाए गए अंकुश के नीचे काम करता है वो निरंतर पतन ही करता चले। दूसरे के द्वारा लगाया गया अनुशासन उत्थान नहीं करता है, आत्मानुशासन ही उत्थान करता है। हम स्वयं को क्यों ना मर्यादा में बांध लें, हमारी अपनी मर्यादाएं हम निश्चित कर लें, कितना बोलना, कितना मौन रहना, कितना खाना, क्या नहीं खाना, सब चीजों में कितना चलना, कितना नहीं चलना, क्या करना, क्या नहीं करना। इदम कर्तव्यम, इदम ना कर्तव्यम, इदम आचरणम, इदम ना आचरणीयम, इति नियम प्रतिज्ञा आत्मानुशासनम इति। यह नियम, यह प्रतिज्ञा, यह है आत्मानुशासन कि इतना करूंगा, यह नहीं करूंगा। ये हम स्वयं निर्धारित करें, कोई और हमारे लिए निर्धारित करे कि आपको इतना इतना करना है और इतना नहीं करना, हमें मुश्किल मालूम पड़ने लगती है। लेकिन जब हम स्वयं अपने लिए निर्धारित कर लेते हैं, अपनी सीमाएं हम स्वयं बना लेते हैं, अपने को स्वयं मर्यादित कर देते हैं। जब सरोजनी नायडू ने कहा कि गांधी जी को 10 मुनक्के की जगह 15 मुनक्के देना शुरू करो, उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तब मालूम गांधी जी ने क्या कहा अगले दिन कि 5 और एक तरफ रख दो, और 5 जो नायडू ने बढ़ाए हैं वो तो अलग ही कर दो, मेरे में से 5 और कर दो। तो नायडू ने पूछा कि बाबा बापू, मैंने 10 की जगह 5 ही तो बढ़ाए हैं। तो बोले, मैंने 10 की जगह 5 ही तो कम किए हैं। तो 5 बढ़ा करके मेरी मर्यादा को तोड़ना चाहते हो, तो मैं अपने को और 5 कम करके उस मर्यादा में बांधना पसंद करूंगा। हम अपने को, अगर हम तृप्ति चाहते हैं, अगर हम आसान जीवन चाहते हैं, तो अगर हम अपनी पांचों इंद्रियों और मन के विषयों को असीम बना लेंगे तो कभी तृप्ति मिलेगी क्या? कभी हमारी मुश्किलें आसान हो सकेंगी क्या? हम दूसरे के सामने कितनी हाथ फैलाते रहें कि हमारी मुश्किलें आसान कर दो, हम तो अपनी मुश्किलें बढ़ाते जाएं और आसानी का उपाय पूछें। हम अपने लिए अशांति के उपाय करते जाएं और दूसरे के पास बैठ के शांति का उपाय पूछें? नहीं, हमें स्वयं अपने भीतर देखना पड़ेगा कि उन चीजों को मैं हटा दूं जो चीजें मेरे जीवन में अशांति पैदा करती हैं, उन्हीं को रखूं जो मेरे मन को शांति और पवित्रता देती हैं। ये मेरी मर्यादा है। मैं विद्यार्थी हूं, मेरी क्या मर्यादा है? मेरी मर्यादा यह है कि मैं अपने पढ़ने का समय निश्चित कर लूं। माँ और पिता या कि आसपास के लोग मुझे कहें कि तुम पढ़ते नहीं हो, इससे पहले ही मैं अपनी सीमाएं निर्धारित कर लूं तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपने आप ही अपने को रेगुलाइज कर रहा हूं, किसी दूसरे के रूल्स या रेगुलेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब कितना आसान होगा हमारा जीवन। हर व्यक्ति जो है अपनी सीमाओं को समझे, अपनी योग्यता से ही सीमा निर्धारित करे। हम लोग लेकिन इस तरह के आदत अपनी डालना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग अपने साथ ही सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, दूसरे के साथ सामंजस्य करना तो बहुत कठिन है भैया। अपने स्वयं के जीवन के साथ सामंजस्य करना, कहते तो ये है कि सबसे सामंजस्य करके, एडजस्ट करके चलना, कॉम्प्रोमाइज करके चलना थॉट्स और चीजों को लेकर के, लेकिन अपने साथ भी एडजस्ट करना, अपने विचारों के साथ, मेरी आकांक्षाएं बहुत हैं, उनको मैं किस तरह से मर्यादित करूं, मैं अपनी सीमाएं खुद कैसे निर्धारित करूं। दो प्रकार से हो सकती है, जैसे किसी चीज की इच्छा हुई, जैसे ठंड लग रही तो क्या करें, तो हीटर चला लो, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा अपनी विल पावर बढ़ा लो, थोड़ी सी अपनी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा लो, ताकि वो ठंड आसानी से सहन हो जाए। अब अगर मैं ये उपाय करता हूं कि ठंड से बचने के लिए अपनी सहन शक्ति बढ़ा लेता हूं, तो ये उपाय शाश्वत है, ये उपाय पराश्रित नहीं है, आत्माश्रित है। और वो जो पंखे वाला उपाय है वो, या कि कूलर वाला उपाय है, वो दूसरे पे आश्रित है। लाइट चले जाने पर 100 गालियां देने का मन होगा और जिंदगी जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो उसी पे डिपेंड हो गया था कि ठंड लगेगी तो हीटर चलेगा, और आज तो लाइट गायब है, तो मेरा मन होता है कि पूरे सिस्टम को दोषी ठहराऊं, और खुद तो तकलीफ पा ही रहे हैं क्योंकि ठंड को सहने की शक्ति थी नहीं और हीटर बंद हो गया है, सो तकलीफ ज्यों की त्यों है, और सबको गाली दे करके, और मैंने क्या कमाया क्या पाया। इस तरह हम अगर देखें, हमने अगर अपने आप को मर्यादा निर्धारित करने का आशय है, अपनी योग्यता को बढ़ा लेना, अपने को स्वास्थ्य बना लेना, अपने को पराश्रित हम कम से कम बनाएं, चीजों पर हम कम डिपेंड रहें, हमें कम से कम में काम करने की आदत बन जावे, तो फिर देखिएगा बहुत आसानी से किसी के पास में 4 चीजों की जरूरत है और 40 चीजें हैं, वो कितना तृप्त रहेगा। और जिसको 4 चीजें तो हैं और 40 की जरूरत है जिसकी, वो कभी तृप्त हो पाएगा? सीधा सा गणित है, अगर गणित की भाषा में समझना चाहें अपन, इस पर भी विचार करें। मुझे आपको, मैं, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी बाई फोर्स कोई चीज नहीं कहता हूं ना, मेरी आदत है, आप पे छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि हर एक का अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर व्यक्ति यहां यूनिक है, कोई व्यक्ति किसी से कंपेयर करे तो कोई लाभ नहीं, सबकी अपनी क्वालिटी और डिसक्वालिटीज है, और कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारी डिसक्वालिटीज हो या जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हो, क्वालिटी सारी जिसके अंदर है वो हमारे भीतर बैठा है, उसको रोज प्रणाम करते हैं, इसके अलावा किसी के पास 100% क्वालिटीज नहीं है। तो हमें स्वयं अपने भीतर देखना चाहिए कि हमारी अपनी डिसक्वालिटीज कितनी कम हुई है और हमारी क्वालिटीज बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। मैंने अपनी मर्यादा अपने हाथ से निर्धारित की है तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। और दूसरी दो बातें और, कि मुझे दायित्व का बोध हो तो मैं आसान बना सकता हूं अपने जीवन को, हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर मैं अपने दायित्व को ठीक ठीक पहचानूं, और साथ साथ मुझे कर्तव्य का बोध हो। और तीसरी बात, मेरे चेतना को मैं परिष्कृत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूं। ये 3 बातें और समझ लें, मैं वैसे इन बातों पे कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं, पर फिर भी और थोड़ा सा अपन चर्चा कर लें और बात थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए, ताकि आसान हो जाए, और कुछ नहीं। दायित्व क्या चीज है? मैं मनुष्य हूं, मेरा पहला दायित्व है मानवता, यहां से शुरू होता है दायित्व। मैं मनुष्य हूं, मेरा दायित्व है मानवीयता, फिर मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी की बहन हूं, या कि मैं और भी किसी ऑफिस का ऑफिसर हूं, या कि मैं लेमैन हूं, या कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं उसके बाद और भी बहुत कुछ हूं मनुष्य होने के साथ साथ। तब मेरा पहला फर्ज क्या है, तब मेरा पहला दायित्व क्या है? मनुष्यता मेरा पहला दायित्व है। उसके बाद अगर मैं पिता हूं तो फिर मेरे अपने परिवार के मुख होने की वजह से और बहुत सारे दायित्व आ जाते हैं मेरे ऊपर। फिर मैं किसी समाज का एक अभिन्न अंग हूं, एक यूनिट हूं, तब मेरे उस समाज के संदर्भ में कुछ दायित्व मेरे ऊपर आते हैं। इस तरह अगर मैं देखूं तो इस दुनिया का मैं एक व्यक्तित्व हूं, और मेरा उस दुनिया के प्रति भी कुछ दायित्व बनता है, ये सब दायित्व बोध है। पर सबसे पहला दायित्व मेरा मानवता का है, और मानवता के मायने क्या है कि मेरे जीवन से कम दूसरे को तकलीफ पहुंचे, ये मेरी मानवता है। परस्परोपग्रहानाम परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र किताब में लिखा है, पर वो वास्तव में देखा जाए तो वो हमारा अपना दायित्व है। एक जीव दूसरे का उपकार करे, ये उसका दायित्व है, ये इसके जीव होने की कहना चाहिए मजबूरी है। मैं जीव हूं इसलिए मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है। लेकिन ये दायित्व बोध ही खत्म हुआ है धीरे धीरे, हम इसको जागृत करें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो अपना दायित्व नहीं पूरा कर रहा है, वो उसकी जाने, मैं अपना दायित्व पूरा करूं। क्योंकि मजा ये है कि हम सब लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो सब कहवे की बातें हैं, कुआ करत अपना दायित्व पूरा, अपन भी दायित्व करें, उन्हें अनाउंस करो कि दूध भर दे सब जने, सुनने के अपन तो दूध ही सब ही जने जब भर है दूध तो अपनो पानी पता ही नहीं लग है, तो सबने भर दो पानी, दूसरे दिन कोई दूध ही नहीं, हमने सबने यही सोचा। ऐसा सोचने वाला कभी भी अपने जीवन को आसान नहीं कर सकता, दूसरे के जीवन को आसान करना तो ठीक ही है, मुश्किल ही पैदा करे। दायित्व बोध के मायने ये है कि मेरे भीतर ऐसी चेतना बन गई है कि मुझे, मैं जहां हूं जिस पद पर हूं वहां पर मुझे अपने जिम्मेदारी को समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी जिम्मेदारी, मुझे जरा भी उसमें कोताही या लापरवाही नहीं करनी है। इतना अगर हमारे ध्यान में आ जाए, और उसी से जुड़ा हुआ है कर्तव्य। कर्तव्य और दायित्व में बड़ा सूक्ष्म सा फर्क है। दायित्व तो जीवन भर निर्वाह करना पड़ता है, उस दायित्व के लिए टुकड़े टुकड़े में कर्तव्य की तरह पूरा करना पड़ता है। जैसे कि मैं पिता हूं, मेरे पिता का दायित्व है कि वो बेटे को अच्छी शिक्षा दे, ठीक है, मैंने अपना दायित्व पूरा किया, मैं हमेशा अच्छी शिक्षा देता हूं। लेकिन एक दिन जब मेरा बेटा बिगड़ने लगा, तब मैंने उसका कान नहीं पकड़ा, तो फिर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। हाँ, ये कर्तव्य बोध है। जब मेरा दायित्व है कि वो अपना हित करे, और अगर वो अपना अहित करने लगे तो फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे टोकूं। कब तक टोकूं? 16 वर्ष तक। वेदों में लिखा हुआ है कि 16 वर्ष तक ही अपने बेटे को टोकना, उस पर पूरा अपना अनुशासन रखना, 16 वर्ष के बाद फिर वो मित्र की तरह है, उसे सलाह देना तो देना, उसके किसी भी काम में इंटरफियर नहीं करना। विनोबा के अपने जीवन की घटना है, उनके पिता उन्हें हमेशा हर काम के लिए कुछ ना कुछ गलती निकालकर डांटा ही करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, कोई ना कोई गलती निकल ही आती थी दिन भर में। शाम को आए विन्या, विनोबा का नाम बचपन का विन्या था, तो पिता आएंगे और मां से कहेंगे विन्या कहां है, सो गया, उठाओ उसको। उठाया जाएगा, विन्या तुमसे मैंने कपड़े धोने को कहा था, तुमने धोए, ओ मैं तो भूल ही गया, तो एक तमाचा पड़ा, अच्छा सो जाओ मैं धो लूंगा, लेकिन तुमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, मैं तुम्हें अपना कर्तव्य याद दिला करके मैं स्वयं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य याद दिलाए बिना नहीं रहूंगा, ये मेरा दायित्व है। मुझे अपना कर्तव्य भी करना है, दूसरे को कर्तव्य बोध भी कराना है, यही मेरा दायित्व। कर्तव्य और दायित्व में बड़ा सूक्ष्म सफर है। और एक दिन ऐसा हुआ कि विन्या इंतजार करते रहे कि अब पिता आएंगे और अब मुझे जगा करके फिर डांटेंगे, लेकिन उस दिन पिता आए, विन्या जागते भी थे फिर भी नहीं बोले और चुपचाप सो गए। तो रात भर विनोबा ने लिखा कि मुझे नींद नहीं आई कि क्या पिता मुझसे सचमुच नाराज हैं, नाराज होते तो वो होते नाराज, लेकिन ऐसा चुप रहना तो बहुत तकलीफ देता है, डांट लेते तो अच्छा लगता। और सुबह सुबह जाके मां से कहा कि मां पिता ने आज मुझसे कुछ भी नहीं डांटा, कुछ भी नहीं कहा, क्या बात है, तो जा तू उन्हीं से पूछ करके आ। तो पिता के पास पहुंचे तो पिता कुछ नहीं बोले और कहा कि विन्या देख ले वहां लिखा रखा हुआ है, एक कागज पर लिखा था कि मेरा विन्या कल मुझे अचानक मालूम पड़ा कि 16 वर्ष का पूरा हो गया है, वेद में लिखा है 16 वर्ष के बाद
बेटा मित्र के समान है। मैंने अभी तक अपना दायित्व और अपना कर्तव्य निभाने के लिए विन्या को कई बार डांटा है। विन्या मुझे इस बात के लिए क्षमा करे, अब उसे डांट ना पाऊंगा, अब उसे सलाह ही दूंगा। तब उस दिन के बाद से विन्या ने उस दिन के बाद से यह तय कर लिया कि जब पिता मुझे सलाह देंगे अब मुझे डांटेंगे नहीं, और जब मेरे लिए कोई डांटने वाला नहीं है तो मुझे अपनी मर्यादाएं, मुझे अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित कर लेनी चाहिए, मुझे अपना कर्तव्य बोध स्वयं होना चाहिए, क्योंकि अब टोकने वाला कोई नहीं। अगर हम इस तरह से अपने जीवन में स्वयं ही अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को पहचाने, तो कोई वजह नहीं है भैया कि अपना जीवन आसान न बने और आसपास का आसान न बने। मैं तो और बहुत अधिक आपसे क्या कहूँ, बस इतनी छोटी छोटी सी बातें जानता हूँ, और कोशिश मेरी यही रहती है कि इन सब बातों को जितना हो सके अपने जीवन में अपन सब लोग उतारें, कोशिश करें कि ये सब चीज़ें हमारे भीतर आएं। बहुत बहुत मुश्किल है अपने दायित्व और अपने कर्तव्य दोनों को निर्वाह करने का। एक और बहुत छोटी सी विवेकानंद के जीवन की घटना है, इसी तरह उनके साथ भी यही चीज हुई थी कि जब एक दिन अचानक पिता के सामने, विश्वनाथ के सामने जाके विवेक नरेंद्र ने कहा था कि मेरे लिए आपने क्या जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे क्या उत्तरदायित्व, मुझे क्या सौंप के जा रहे हैं विरासत में, आप अपना दायित्व पूरा करके जा रहे हैं तो मुझे क्या सौंप रहे हैं। तब विश्वनाथ ने कहा था कि जाओ वो दर्पण उठा के लाओ, और जब नरेंद्र दर्पण उठा के लाए थे तो दोनों हाथ से वो दर्पण नरेंद्र को सौंप दिया था कि ये विरासत में तुम्हें देके जा रहा हूं कि जब कभी भी कहीं भटकने लगो तो दर्पण देख लेना कि तुम भटक रहे हो और तुम्हें स्वयं अपने को सुधारना है। अब मेरा दायित्व समाप्त हो गया है, मैं तुम्हें अपने जीवन में जो देना था वो दे चुका, और ये दर्पण तुम्हें स्वयं अपने को देखने के लिए देके जा रहा हूं। क्या इस तरह हम अपने दायित्व को और अपने कर्तव्य को पूरा करके दूसरे को भी अपने दायित्व और कर्तव्य का बोध नहीं दिला सकते हैं? दिला सकते हैं। दूसरा अगर हमें अपने दायित्व का बोध कराता है तो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, इसी तरह दूसरे को भी उसके दायित्व और कर्तव्य का बोध कराना, तो हम इस तरह अपने जीवन को और सबके जीवन को आसान बना सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग
कुत्ते की लिखने से मेरा मतलब कुत्ते के ऊपर जो सुंदर चीजें लिखी है वो आसान लेगा। मैं कहा आप होश से बैठे भी मैं क्या करूंगा, आपके साथ हूं, आप तो मेरे साथ रहे, तो कुत्ते की रचना सुनने के बाद मुझे भी ख्याल आ गया। एक मंत्री का कुत्ता मंत्री के बंगले से भागा और लगा नर्मदा में कूदने, मैं कभी उससे लगा पूछने कूदोगे तो मर जाओगे, पूरा मरने के लिए तो कूद रहे, तो हमने तो मरने का कारण बताओ, तो कुत्ते ने कहा कि और अब अधिक जुर्म हम सह नहीं सकते, एक ही बंगले में दो कुत्ते हैं। दोस्तों, नैतिकता के पतन की बात बहुत बढ़िया उठाई हमारे भाई सुंदर जी ने। सुंदर जी हमारे पिछले 25-30 वर्षों के साहित्य आकाश में एक बड़े आदर के साथ दिए जाने वाला नाम है। नैतिकता के पतन की जुगाड़ की टेक्नोलॉजी एक बात जरूर है सुंदर जी, जुगाड़ की कविता आपने सुनाई, उसके बाद परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर जब कविता सुनाई तो मैंने समझ लिया कि शिष्य ने गुरु से जुगाड़ तो लगा ही लिया, और शिष्य ऐसे होते हैं। एक बार एक गुरुवर से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुवर यथार्थ और भ्रम में अंतर क्या है, तो गुरु ने कहा बेटे मैं तुझे कुछ समझा रहा हूं, ये यथार्थ है और मैं ये समझ रहा हूं कि तू समझ रहा है, ये भ्रम। ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा आज की तालीम चली आ रही, बहुत कम एक राज्य पैदा होते, ये एक राज्य की धरती है, लेकिन काश आज के जो वर्तमान के गुरु को ऐसे शिष्य मिल जाए, भारत के भविष्य का उज्ज्वल माथा हो जाए, फिर वही हमारे प्राचीन मूल्य वापिस आ सके। इसके लिए सब जगह की माटी से कोई नौजवान घर से निकलता है 17 साल की उम्र में, हम 17 साल की उम्र की डेहरी पार किए हुए लोग हैं, 25, 30, 35, 50 साल की डेहरीज में आ गए, लेकिन कभी विचार करना कि उस व्यक्ति के उम्र में क्या उन्हें नए मकान की ख्याल में नहीं आया होगा, क्या उनके माता पिता नहीं गए होंगे, क्या उनको भाई बहन का ख्याल में नहीं होगा, लेकिन सब चीजों को त्याग कर सिर्फ सरल संस्कृत के माता को ऊंचा करने के लिए अगर सतह की माटी से वो नौजवान निकल सकता है, तो मानसून के नौजवान उसके उसके सर को अपने सर के साथ में आते हुए भारत की माटी की तरफ बनाने मानसून से कर सकते हैं, मानसून का श्रम हो सकता है। मैं सारे देश की तैयारी को आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से जोड़ देना चाहता हूं, और शायद हमारे पूरे कविदरबार का सिर्फ यही मकसद अब बचा है, और कविताएं हैं तो गुरु के लिए, बोलना है तो गुरु के लिए, लिखना है तो गुरु के लिए, सोना है तो गुरु के लिए। शायद आज का कवि सम्मेलन भी बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, मैं तो यूं समझ लेता हूं जब मुझ जैसे आदमी को शासक रहे हो इसका मतलब श्रोता अच्छे हो, लेकिन मेरे को सहन करूंगा तेरी तुम बार घर से निकाला गया, बाद उसको अपने दार्जिलों से कहते नहीं मैं अच्छा नेक बना रहूंगा, मुझे कह दो तुम वो रख ले, मैं वैसा आदमी बड़े मुश्किल में फिर से घर प्रवेश मिलता। आप लोग बड़े आदर से सुन रहे हो, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, और इस प्रणाम की बेला में एक ऐसे कवि को निवेदन करना चाहता हूं जिसके कंठ को सुने, जिसके कंठ में सरस्वती है, जिसकी कविता को सुने, चाहे वो राजनीतिक वेद कहे, चाहे श्रृंगार की कविता कहे, चाहे मुनवादे की कविता कहे, राकेश राजी को बड़े लाल प्यार से सारे देश सुनता है, मानसून के श्रोताओं के बीच में आ रहे हैं राकेश राठौर। यार ताली जोर से पुट्टा करो, हम तो बड़े जोर से करते, आप ताली से दिक्कत करते, अच्छा लगता है। और कोई
नहीं, आज तक कोई कभी माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ भाई। हाँ सच बात है, मैं मैराथन के जिन बिंदुओं का मनन करता हूं, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, यहां विराजमान मुनि के चरणों में नमन करता हूं, एक रचना गुरु दरबार में प्रेषित करना चाहता हूं कि ये श्रमण संघ के महासंत, ये श्रमण संघ के महासंत, ये जिन आगम के निर्वसंत, ये जिन आगम के निर्वसंत, ये जान दिवा कर दिग दिगंत, ये कुंड कुंड से अमर संत, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमे, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमे, सतपथ दिखलाने आए हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, ये श्रमण संघ के महासंत, ये संत न होते धरती पर सागर भी पथ भूला होता, ये संत न होते धरती पर सागर भी पथ भूला होता, ये महल तारी न होते बस मिट्टी का टीला होता, ये संत न होते धरती पर सागर भी पथ भूला होता, ये महल तारी न होते बस मिट्टी का टीला होता, गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले, गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले, तुलसी को जैसे धाम और मीरा को जो घनश्याम मिले, ये वेद पुराण कुरानों का, ये वेद पुराण कुरानों का फिर सार बताने आए हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, ये श्रमण संघ के महासंत, ये जिन्नागम के निर्वसंत, वह शरद पूर्णिमा का प्यारा दिन जग में नारा आया था, वह शरद पूर्णिमा का प्यारा दिन जग में नारा आया था, युग को निर्मल कर देने को खानदान मिला, खुद जियो और जीने दो का, खुद जियो और जीने दो का, फिर ताक पहने आए हैं ऐसे गुरुवर के चरणों में, हम शीश झुकाए ये श्रमण संघ के महासंत, ये जिन्नागम के लव्य संत। और सभी कवि दरबार को नमन करते हुए, मंच का सबसे छोटी उम्र का कवि है ये, तो विद्वान कवि है जो जुगाड़ से आ जाते हैं। हाँ नहीं, सुंदर जी बहुत विद्वान कवि भाई। एक बार चलते चलते इनके बच्चे ने इनसे पूछा, पापा जी हमारी कल परीक्षा है, एक प्रश्न का उत्तर बताइए। बोले बस एक का। बोले बताओ क्या है प्रश्न। बोले पापा तमसोमा ज्योतिर्गमय का क्या मतलब होता है। बोले बस तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब वही होता बेटा कि तुम्हारी माँ ज्योति ताकिज गई हुई है। तो विद्वान कवि, इन्हें प्रणाम करता हूं। एक रचना आपकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए, देश की राजनीति चल रही है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, दोनों तरफ से खेचा तानी मची हुई है, वहां से अम्मा फटकारती, यहां से बंगाल की शेरनी फटकारती है, तो मैं कुछ एक छंद दुष्टों के नाम देना चाहता हूं कि जय ललिता जी सुनो और के न गुन गुन, कि जय ललिता जी सुनो और के न गुन गुन, और न विषमता की फसलें उगाइए, कि जय ललिता जी सुनो और के न गुन गुन, और न विषमता की फसलें उगाइए, तुम भी कुंवारी हो वो भी कुंवारे हैं, कि तुम भी कुंवारी हो वो भी कुंवर है, कुंवारी हो कुंवर का न दर्द बढ़ाइए, भक्त ने जो दान दिया आज तुम मत का, भक्त ने जो दान दिया आज तुम मत का, उस मत दाता का न मान घटाइए, जनता का ध्यान दर ममता की राह दर, हो सके तो गीत समता के दोहराइए, हो सके तो गीत समता के दोहराइए, हो सके तो समूहता। और उनके कर्म कैसे है कि कभी कभी अटल को अटकाती सोनिया जी को पटाती, अटल को अटकाती सोनिया जी को पटाती, चंद्रमा से खर की मनमोहनी बनी हो तुम, अटल को अटकाती सोनिया जी को पटाती, चंद्र से खर की मनमोहनी बनी हो तुम, कभी लाल को बुलाती कभी लाल को बुलाती, मुलायम को मचाती, करुणा के लिए सत्ता शेरनी बनी हो तुम, और नीतियों पे काट चाटी नेताओं से साट गाटी, नीति नहीं नेताओं के वास्ते बनी हो तुम, देख के ही रंग बन कहता है करुणा, सुखों के लिए हंसुर पुआ खसितनी हो तुम, सुखों के लिए हंसुर पुआ खसितनी हो तुम, सुखों के लिए हंसुर पुआ खसितनी हो तुम। एक रचना पिछले दिनों जब सीताराम केसरी जी देश में समर्थन की व्यवस्था संभाले हुए थे, उनको एक रचना प्रेषित करते हुए मैंने उनकी समर्थन की व्यवस्था को साइकिल का रूप प्रदान किया है। कभी देवगौड़ा जी को उनने साइकिल पर घुमाकर बैठाया, कभी गुजराल जी को घुमाते रहे। रचना ध्यान दीजिएगा कि आओ यारो तुम्हें दिखाए साइकिल सीताराम की, आओ यारो तुम्हें दिखाए साइकिल सीता राम की, इस साइकिल पर डबल चलो ये साइकिल है कमाल की, साइकिल बेशरम साइकिल बेशरम, आओ यारो तुम्हें दिखाए साइकिल सीता राम की, इस साइकिल पर डबल चलो ये साइकिल है कमाल की, साइकिल बेशरम साइकिल बेशरम, यारो याद करो चाचा जी ने जब हिंदू छोड़ा था, समर्थन वापस लिया, कि यारो याद करो चाचा जी ने जब हिंदू छोड़ा था, गिरा गिरा चिल्ला कर लालू से बोला दे गोरा था, आपस में मिलकर सबने साइकिल का पंचर जोड़ा था, आपस में मिलकर सबने साइकिल का पंचर जोड़ा था, दे गोरा तो कु कूद गए, दो गुआ तो कूद गए, फिर कूद गए गुजराल जी। इस साइकिल पर चलो, ये साइकिल है कमाल की, साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम। अब समर्थन वापस लिया सोनिया जी, नाराज हुई सोनिया जी, क्या कहती कि कहे सोनिया जी चाचा से हवा जरा कम भरा करो, कहे सोनिया जी चाचा से हवा जरा कम भरा करो, वो फोर्स में अगर कहे तो तुम थोड़ा सा डरा करो, अर्जुन सिंह और माधव सुन लो ब्रेक चेक तुम करा करो, अर्जुन सिंह और माधव सुन लो ब्रेक चेक तुम करा करो। बहुत पुरानी हुई साइकिल, लगती है तुम भरा सी, इस साइकिल पर डबल चलो, ये साइकिल है कमाल की, साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम। साइकिल की वास्तविकता कि दौड़े सर पर कभी कभी ये डगर मगर सी चलती है, दौड़े सर पर कभी कभी ये थलर मलर सी चलती है, अडवानी का देख देख रथ इसकी हवा निकलती है, अडवानी का देख देख रथ इसकी हवा निकलती है, माया ममता के चक्कर में इसकी चैन उतरती है, जनता तो खुद परेशान है, ये जी के जंजाल सी, इस साइकिल से दूर हटो, ये साइकिल है कमाल की, साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम, साइकिल। और आप साइकिल किसके पास है कि साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम। चाहे जितनी हवा भरो ये टायर ट्यूब से देसी है, चाहे जितनी हवा भरो ये टायर ट्यूब से देसी है, चेचिस बहुत पुराना है, चेचिस बहुत पुराना है, पर हैंडल नया विदेशी है, चेचिस बहुत पुराना है, पर हैंडल नया विदेशी है, घोटाले बाजू में इसकी कर दी ऐसी तैसी है, घोटाले बाजू में इसकी कर दी ऐसी तैसी है। इस साइकिल पर बैठ सोनिया, इस साइकिल पर बैठ सोनिया, हो गई माया मौसी, इस साइकिल से दूर हटो, ये साइकिल है कमाल की, साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम। आओ यारो तुम्हें दिखाए साइकिल सीताराम की, इस साइकिल से दूर हटो, ये साइकिल है कमाल की, साइकिल बेशरम, साइकिल बेशरम।
वाह 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 वाह, ये तो प्रेरण था भाई राकेश जी का, अनेकों कविताएं और जहां तक आध्यात्मिक और श्रृंगार के गीत हैं उनके बादशाह हैं ये, और ये दरअसल साइकिल उन्हीं की है, किसी और की नहीं है, उसका वो वर्णन कर रहे थे। और उनके घर में जो भी चीजें लगभग वो पुरानी है, नहीं तो बची ही नहीं है। एक बार रद्दी वाले उनके घर से निकला और उसी रद्दी वाले ने चिल्लाया, फटा पुराना सामान बेचो, तो उनकी पत्नी भीतर से आई और बाहर आके कहती है, कल आना आज वो बाहर गए। तो ये पुरानी साहित्य का वर्णन बहुत अच्छा, देश की राजनीति को एक साहित्य के माध्यम से बांध लेना कोई आसान बात नहीं है। मैं निर्मल जी आपका इसमें विशेष ध्यान चाहूंगा, पता नहीं क्यों मैं जब आचार्य श्री का वर्णन चलता है तो इन दो कवियों को बहुत याद करता हूं। एक तो भाई सुंदर को, जिन्होंने अद्वितीय बात कही कि वे शिव के महावीर, ये शिव के महावीर, फिर वर्धमान और वर्तमान में अंतर क्या है। एक बात और इसी तरह की बेजोड़ शायद हिंदुस्तान में किसी और ने नहीं कही है, सुंदर जी मैं दावे से कहना चाहता हूं, जो उपमा आपने दिए मैंने इसके पहले कहीं नहीं सुनी, और ऐसी उपमा मैंने सागर में माननीय श्री निर्मल जी के मुखारविंद से सुनी थी। उस रचना के साथ उन्हें आगाज देना चाहता हूं कि निर्मल जी आप आए और वो पंक्ति अवश्य सुनाए, ताकि मेरी बात प्रमाणित हो सके कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर ऐसा ही कहा जा सकता है। बहुत आदर के साथ आदरणीय श्री निर्मल जी।
धन्यवाद, आपने धर्म की रचनाएं भी सुनी, कर्म की रचनाएं भी सुनी, राजनीति की सुनी। मैं निवेदन करूं कि मैं भारत वसुंधरा के गीत गाता हूं, उसी के अंतर्गत कर्म आ जाता है, उसी के अंतर्गत धर्म आ जाता है।
देखिए जैसा अभी अजित भाई ने कहा चार पंक्तियां जो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव से शुरू करता हूं कि क्रम उद्घाटित ऋषभ देव से बेअगाध करुणा सागर है अनुशासन प्रिय रामचंद्र जी गिरधारी नटवर नागर है हमारे देश की विभूतियां
क्या बात है क्या बात
क्रम उद्घाटित ऋषभ देव से बेअगाध करुणा सागर है अनुशासन प्रिय रामचंद्र जी गिरधारी नटवर नागर है महावीर और बुद्ध तपस्वी ममता समता की दादर है लेकिन ये सब तो इतिहास हो गए वर्तमान विद्यासागर है वर्तमान विद्यासागर है भगवान से कभी भी पृथ्वी खाली नहीं होती क्रम उद्घाटित शब्द से बेअगाध करुणा सागर है अनुशासन प्रिय रामचंद्र जी गिरधारी नटवर नागर है महावीर और बुद्ध तपस्वी ममता समता की गागर है ये सब तो इतिहास हो गए वर्तमान विद्यासागर है वर्तमान विद्यासागर है देखिए चार पंक्तियां और आचार्य श्री पर मैं बहनों का विशेष ध्यान चाहूंगा कि इंद्र के कोप की रोक सके
क्या बात
जलधार को गिरधर नागर हो ओ हो झूठे देर परे जनहित सबरी की कुटी यदि सादर हो इंद्र के कोप की रोक सके जलधार को गिरधर नागर हो झूठे देर परे जनहित सबरी की कुटी यदि सादर हो मन कहता अंजन चोर बनू
क्या बात
मन कहता अंजन चोर बनू मंत्रों का सूत्र उजागर हो और हर मौत कहे ममता भर के सुत हो तो विद्यासागर हो विद्यासागर हो नंदू जब मैं यहां आ रहा था तो बाहर से आवाज आई किसी बच्ची की आवाज थी यहां से मंच से मांस निर्यात पर रचना चल रही थी बच्ची की रचना थी उसी सुर में सुर मिलाते हुए देखिए अयोध्या जहां अयोध्या नहीं था क्योंकि युद्ध नहीं थे तो अयोध्या काय था उसी को अवध कहते हैं जहां गद नहीं हुआ कभी और आज हमारे देश का देखिए कहां कहां कौन कौन सा सामान जाता था कभी और आज मन सुंदरियात हमारे यहां से हो रहा है दो चार मुक्तक देखिए इस पर कि गायों का वध भैंसों का बध फिर अवध कहां रह पाएगा
क्या बात वाह वाह वाह
गायों का बध भैंसों का बध फिर अवध कहां रह पाएगा देशों के मांस विदेशों को क्या राम राज्य आ जाएगा गायों का बध भैंसों का बध फिर अवध कहां रह पाएगा देशों के मांस विदेशों को क्या राम राज्य आ जाएगा गोपालों की धरती पर तू पशुओं का खून बहाएगा गौतम गांधी का नहीं देश जल्लादों का कहलाएगा गौतम गांधी का नहीं देश जल्लादों का कहलाएगा एक मुक्तक और कि अपनी गर्दन सम्मुख रखकर पशुओं की गर्दन तोड़ो तो कटने की पीड़ा क्या होगी कुछ समझो तो कुछ बोलो तो
क्या बात
अपनी गर्दन सम्मुख रखकर पशुओं की गर्दन तोड़ो तो कटने की पीड़ा क्या होगी कुछ समझो तो कुछ बोलो तो पुरखों की मान प्रतिष्ठा का क्या हसर किया है ये युग ने तनिके तो आके बंद सही मन का दरवाजा खोलो तो मन का दरवाजा खोलो तो ये मनोमत की धरती है हम अपने कौन निभाएंगे भूखा रह जाए पेट मगर भूखा रह जाए देश मगर पशुओं को नहीं सताएंगे ये मनोमत की धरती है हम अपने कौन निभाएंगे भूखा रह जाए देश मगर पशुओं को नहीं सताएंगे जीवन तो आखिर जीवन है प्राणों का मोल नहीं होता अंगीकारी सरकारों को समझाएंगे जतलाएंगे अंगीकारी सरकारों को समझाएंगे जतलाएंगे एक बात कहना चाहूंगा जैन अच्छी तरह से समझता है से कटना तो चाहे काट के मारो पशु को, चाहे वैसे ही मर जाए, जितने चेतन ही अचेतन में एक दिन जाने दे कर्मों के परिणाम के अनुसार। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखिए रचना दे रहा हूं, दम यही है, दम यानी दुख, एक शब्द भूत, भूत यानी राजा, दम नहीं मुझको के उत्पात क्यों है, दम नहीं मुझको के उत्पात क्यों है, दम नहीं अपने वतन में घात क्यों है, रक्त रंजित है दिशाएं, दम नहीं है स्वार्थ में लिपटी हवाएं, दम नहीं है, दम नहीं आरक्षण समिति का भी, दम नहीं भाली सशक्ति प्रीति का भी, आदमी पैसों बिके ये दम नहीं है, लाश पर रोटी सके ये दम नहीं है, देश सेवा बन गई व्यापार, देश सेवा बन गई व्यापार ये भी दम नहीं है, राजनीति भ्रष्ट सी तकरार ये भी दम नहीं है, धर्म का चढ़ता नशा ये दम नहीं है, आदमी क्यों कर फंसा ये दम नहीं है, दम फटे कितना के सोचो दोस्तों, आंख ऊंची कर सकेंगे हम कभी, और भाव अपने हाथ से जो कर रहे हैं कर्म फल से भर सकेंगे फिर कभी। अरे चरित्र का इतना हमें कोई बताए, चरित्र का इतना हमें कोई बताए, कब हुआ इतिहास के दरबार में और जंग इतने कब लगी कोई बताए, देश के ईमान की तलवार में, अरे नीति थी सौजन्य था हम प्रेम थे, नीति थी सौजन्य था हम प्रेम थे, अन्याय के सम्मुख में विघलित मौन थे, किंतु अब अन्याय के प्रतिरूप है दम नहीं है, आज हम भी भूख है दम नहीं है, आज हम भी भूख,
बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह 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 सुंदर,
थोड़ा चार पंक्तियां और स्वीकार करें, महाराज श्री को भी सुन लेते हैं, गांधी नेहरू का भी नाम लेते हैं, महावीर बुद्ध सबका नाम लेते हैं, देखिए चार पंक्तियां, महान विभूतियों की चर्चा करते हुए सामाजिक दुखदर्द में आहे भरते हुए लोग बड़े हो गए, अखिल भारतीय मंच पर खड़े हो गए, महान विभूतियों की चर्चा करते हुए सामाजिक दुखदर्द में आहे भरते हुए लोग बड़े हो गए, अखिल भारतीय मंच पर खड़े हो गए, आदर्शों के नाम पर नगर मच्छी आंसुओं के दाम पर इन्होंने देश को छला है, महान आत्माओं के पद चिन्ह जो के तौर पर ही, ना तो उनको किसी ने देखा है, ना उन पर कोई चला है, ना उन पर कोई चला है।
नवल जी स्वयं साहित्य आकाश का बहुत बड़ा नाम, बैठो ना भाई सब कहा जा रहे हैं, वही तो अपने घर जाना है, बैठो बैठो, अभी तो रात बाकी है, बैठो अभी तो बात बाकी है, आषाढ़ के महीने में क्यों जाते हो, अभी तो सावन की बरसात बाकी है, अभी तो सावन की बरसात बाकी है, दोस्तों कैसे कभी को बनाना चाहते हो, मंदिर गए आप तो वातावरण मुझे दें, चार पंक्ति मैं उस कवि के लिए समर्पित करूं, इसके पहले हमारे विमल जी ने एक बहुत बढ़िया चित्र, भाई सब क्या हो गया, नहीं बढ़िया कर बात, अच्छा लग रहा हमको भी अच्छा लग रहा है, हाँ। सामने से आदमी को देखते हैं, हम आपको पीछे से देख रहे हैं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, हाँ। तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं दोस्तों कि देश की हालत जो हो गई कि कहां कुछ जाना है या कुछ जाता है, कितने वायदों का पूरे वायदों का सूरज तो चमका दिया, पूरे वायदों का सूरज तो चमका दिया, मगर एक दिया ना दिया झोपड़ी के लिए, मगर एक दिया ना दिया झोपड़ी के लिए, और दोस्ती अपनी सूरज से होते हुए, दोस्ती अपने सूरज से होते हुए हम तरसते रहे रोशनी के लिए, हम तरसते रहे रोशनी के लिए, ये देश के नाम चार पंक्ति भारतीयों की ओर से आपकी ओर से मैंने प्रेषित किया दोस्तों, कभी कभी अजीब अजीब से दर्श आते हैं, एक बस में सामने जैसे अभी आए पकड़ में आ गया, एक बार और ऐसे आया था कि एक कवि सम्मेलन में मैं अकेला कवि पहुंचा, अब संयोजक जी हमारे सबसे पहला फोन युवा कार्यकर्ता में जानते हैं मोदी जी नाम शायद प्रमोद मोदी, उनने फोन किया। मेरी बड़ी लाचारी होती है, आपने फोन किया तो मेरी एक लाचारी होती है और ये लगभग सभी कवियों की लाचारी कि जहां संत होते हैं हम मना नहीं कर पाते। अब लेकिन तेजी फेरे में लगे थे तो भी हमने कहा ठीक उन्होंने इसको वहां जाएंगे, लेकिन एक कम सम्मेलन में ऐसे हुआ मैं अकेला पहुंचा। अब शायद आयोजक ने कहा आप ही जानो इंतजाम करो, मैंने कहा आपके यहां कोई लेबर एबर काम कर रही है गड्ढा गड्ढा खोदने वाली बताओ मैं उसको कुर्ता पैजामा पहनाता हूं वो कविता कहलाता हूं आप चिंता मत करो। और भाई मैंने यही प्रयोग किया और उसको मैंने कुर्ता पैजामा पहनाया उसके साथ गड्ढे खोदने वाले को। सुने गोवा जी मैं उच्चारण गलत न कर रहा हूं तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि मैंने उसको किसी तरह का भाई साहब मेरे लाल बचा लो अकेला मैं कभी हूं उसको मैंने लेके आया गड्ढा खोदने वाले को। उसने कहा आप कैसे करते हो ये कविता विता जानते नहीं, जिंदगी में मैंने गड्ढा खोदे गड्ढा खोदना जानता हूं ये कविता क्या होती है। मैं कहा तुम मंच पे खड़े हो जाना कुर्ता पैजामा मैं पहन दूंगा अखिल भारतीय कवि तुमको कह दूंगा तुम कविता पढ़ देना। उसको बहुत पीड़ा हुई लेकिन मंच पर वो मजबूरी में आ गया और जो कविता उसने कही देखे कैसे कविता बन गई उसके मुंह से। ना खुदा एक शब्द आएगा इसमें, ना खुदा का मतलब होता है जो नाव को खेता है या जो पार लगाता है उसे ना खुदा कहते हैं। देखे कैसी बढ़िया कविता उस गड्ढा खोदने वाले ने कही है। इधर भी खुदा है इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है क्या बात है बेटा तू राष्ट्रीय कवि है। सावन में लोग स्तर भी चहक जाते हैं कांटे भी बाहर में महक जाते हैं निर्दोष जमाने पर घुमराओ मत इस उम्र में सब लोग महक जाते हैं सब लोग महक जाते हैं। तो इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है। अब मुझे मंच से जाने दो यारो वहां खोदना है जहां ना खुदा है वहां खोदना है जहां ना खुदा है। दोस्तों आप बड़े प्यार से इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हो, मैं एक ऐसे कवि के लिए चार पंक्ति बाल सुन के इन सुधी श्रोताओं को उसे समर्पित करना चाहता हूं। हे कसम तुमको गीता की सुन लीजिए हे कसम। और नैने जी आपने गलत से एक बात कही थी मैं उसी कवि को समर्पित करना चाहता हूं, नाम बाद में लूंगा, नाम सारे देश में विख्यात है। आज जो भी कवि यहां बैठे हैं राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं गलत की बात कही हमारे नरेंद्र जी ने चार पंक्ति गांधी जी को समर्पित करते हुए कहना चाहता हूं। और जिस दिन गांधी जी के साथ जब हुआ तो अंदाज लग गया था जिस देश में यह होने लगा तो गोवध भी होने लगेगा तो यह हुआ। भीष्म पितामह की हत्या गांधी की हत्या को सामने रखें भीष्म पितामह की हत्या कर ली इस युग की तरुणाई ने भीष्म पितामह की हत्या कर ली इस युग की तरुणाई ने हम खड़े देखते रहे और गोवध कर दिया एक कसाई ने हम खड़े देखते रहे और गोवध कर दिया एक कसाई ने सदियों तक तन्ने भटकों के दीपक की ज्वाला रूप रही सदियों तक तन्ने भटकों के दीपक की ज्वाला रूप रही और धर्म धुरी होश करो ध्वजा धर्म की टूट गई और धर्म धुरी होश करो ध्वजा धर्म की टूट गई धर्म की ध्वजा वापस आनी चाहिए। शायद यही कारण है कि आचार्य कुमार ने मांस निर्यात निषेध का जो बहु बढ़ाया है जो सिंहनाश किया है उस सिंहनाश को हम सब मिलकर अगर एक साथ दिल्ली दरबार तक ले जाए तो निश्चित मानिए कौन पूजा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बिल्कुल
अपराधी के लिए दंड मिलना चाहिए जिससे वह अपराध की प्रवृत्ति दोबारा न कर सके और उसके लिए दंड घोषित किया जाए। और बैराजन खड़ा होता है हाथ जोड़ करके कहता है सभी से मेरे से इस तरह की गलती हुई है मैं ही अपराधी हूं निरपराध तोते के लिए मैंने हंटर के द्वारा वैद्य के द्वारा मैंने उसके लिए कोड़े के द्वारा पिटाई लगाई जिससे वह मर गया है उसने तो मेरे जीवन बचाने के लिए मेरी रक्षा के लिए कहा कि यह प्रजा का रक्षक कहा जाता है लेकिन जो रक्षक ही स्वीकार कर लेता है, मंत्री भी खड़े होते हैं, सभी लोग एक तरह से हाथ जोड़ करके कहते हैं, राजन अभी जो हम सभी ने कहा है अपराधी को दंड देने की